नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से अलग होने का फैसला, तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की एक विशाल सुरंग उड़ाई। इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिला सोमरफेल्ड 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। बलोच महिला मंच ने पाकिस्तान में बलोच महिलाओं के जबरन गायब होने के मामले में संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक मानवाधिकार संगठनों के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय 1 मई से लागू होगा। यूएई ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय हित, उत्पादन क्षमता और दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं की समीक्षा के बाद लिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब होर्मुज क्षेत्र में तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता है।
संयुक्त अरब अमीरात ने लगभग 6 दशक बाद ओपेक को छोड़ने का फैसला किया है। इसे वैश्विक ऊर्जा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक का अंत माना जा रहा है। अबू धाबी 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था, तब संयुक्त अरब अमीरात नहीं बना था। समय के साथ संयुक्त अरब अमीरात ओपेक के सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्यों में शामिल हो गया। सऊदी अरब और इराक के बाद इसे तीसरा बड़ा तेल उत्पादक माना जाता है। ईरान से जुड़े हाल के घटनाक्रम और हॉर्मुज डमरू मध्य के आसपास अस्थिरता से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है और संयुक्त अरब अमीरात की निर्यात क्षमता पर दबाव बना है। उत्पादन कोटे के बारे में समय से जारी मतभेदों को भी इसका कारण माना जा रहा है। ओपेक के लिए यह एक बड़ा धक्का है, जबकि अमेरिका के लिए इसे रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जा रहा है। पहले ही अनिश्चितता का सामना कर रहे वैश्विक तेल बाजारों के लिए इस फैसले को नए और अप्रत्याशित दौर का संकेत माना जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
इसराइल ने कल आतंकी गुट हिजबुल्ला की बड़ी सुरंग को ध्वस्त कर दिया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। इजरायली रक्षा बल IDF ने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करते हुए कई आतंकियों को भी मार गिराया। दक्षिणी लेबनान के कांतारा में ये सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी थी और इसे ईरान की सहायता से जमीन के 25 मीटर नीचे बनाया गया था। इजरायली रक्षा बल ने इसे लगभग 450 टन विस्फोटकों की सहायता से नष्ट किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आह्वान किया है कि संघर्ष विराम की बजाय गजा को इसराइल के कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराया जाए। संगठन ने फिलिस्तीन के आम नागरिकों, पवित्र स्थलों और पड़ोसी देशों पर इसराइल के बढ़ते हमलों की निंदा की है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया पर सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करते हुए संयुक्त राष्ट्र में तुर्की के दूत अहमद इल्दीज ने इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि OIC गाजा के लिए संघर्ष विराम समझौते का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2803 के अनुरूप समझौते का दूसरा चरण शुरू किया जाना चाहिए। श्री इल्दीज ने कहा कि संघर्ष विराम का उल्लंघन बढ़ता जा रहा है और गाजा तथा पश्चिमी तट में फलिस्तीन के आम नागरिकों पर इसराइल के हिंसक हमले बढ़ रहे हैं। फलिस्तीनी क्षेत्र में नई बस्तियां बसाने की अनुमति के इसराइल के हाल के फैसले से स्थिति और विकट हो गई है। OIC ने दोहराया कि पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति के लिए इसराइल को सीरियाई अरब गोलन सहित कब्जे वाले सभी अरब क्षेत्रों से पूरी तरह हटने की जरूरत है। श्री इल्दीज ने कहा कि इसराइल को सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। उन्होंने 8 दिसंबर 2024 से सीरियाई क्षेत्र में इसराइल की घुसपैठ की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और 1974 के समझौते का उल्लंघन बताया। OIC ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए लेबनान की संप्रभुता के लिए समर्थन दोहराया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिला सोमरफील्ड 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। सुश्री सोमरफील्ड विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगी। उनका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बलूच महिला मंच ने संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक मानवाधिकार संगठनों से बलूचिस्तान से कथित रूप से महिलाओं के लापता होने के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित प्रमुख मानवाधिकार संगठनों को लिखे पत्र में फोरम ने स्थिति को गंभीर बताया है। फोरम ने क्वेटा में नर्सिंग छात्रा खदीजा बलोच, कराची की हसीना नूर बख्श और केच जिले की गुल बानुक ताज को जबरन उनके घर और हॉस्टल से अज्ञात लोगों द्वारा अपहृत किए जाने की घटनाओं का उल्लेख किया है। इनके परिवारों को अब तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फोरम ने कहा है कि ऐसी घटनाएं बलोच महिलाओं को प्रताड़ित किए जाने की व्यापक साजिश का प्रमाण है। फोरम ने इन घटनाओं की जांच कराए जाने का आग्रह किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने के आरोप में पूर्व FBI निदेशक जेम्स कोमी के विरुद्ध अभियोग दायर किया गया है। ग्रैंड ज्यूरी द्वारा दायर इस मामले में दो आरोप लगाए गए हैं। अभियोग में कहा गया है कि जेम्स कोमी ने पिछले वर्ष 15 मई को जानबूझकर राष्ट्रपति की हत्या करने और उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। उन पर एक राज्य से दूसरे राज्य में धमकी भरा संदेश भेजने का भी आरोप है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई कई महीनों की जांच के बाद की गई है और दोषी पाए जाने पर कोमी को अधिकतम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट सांसदों द्वारा लाए गए उस विधेयक को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा पर अमेरिकी ऊर्जा नाकाबंदी खत्म करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेना अनिवार्य करने की बात कही गई थी। एक रिपोर्ट।
इस विधेयक पर हुए मतदान से यह स्पष्ट हो गया है कि रिपब्लिकन सांसद वेनेजुएला, ईरान और क्यूबा जैसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। डेमोक्रेट सांसद लगातार ऐसे विधेयक लाते रहे हैं जिनका उद्देश्य राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर नियंत्रण लगाना है, लेकिन अब तक कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सका है। क्यूबा से जुड़े इस विधेयक में ये प्रावधान था कि द्वीप राष्ट्र पर किसी भी हमले से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी नहीं पड़ती। हालांकि रिपब्लिकन सांसदों ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अमेरिका और क्यूबा के बीच सीधे युद्ध जैसी स्थिति नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने अमेरिका और ब्रिटेन के बीच साझेदारी को और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया है। अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र में उन्होंने कहा कि वैश्विक अस्थिरता और बढ़ते संघर्षों के बीच दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक चल रहे संघर्षों के कारण दोनों देशों को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा है। चार्ल्स तृतीय ने कैपिटल के पास हुई हालिया हिंसक घटना को उल्लेख करते हुए कहा कि हिंसा की ऐसी घटनाएं कभी सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्ते साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। यह संबोधन ऐसे समय में आया है जब अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेज CJNG के प्रमुख नेता और उसके वित्तीय रणनीतिकार की गिरफ्तारी के बाद मेक्सिको में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा सचिव उमर गार्सिया हार्फुच ने बताया कि देश भर में 130,000 से अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस गिरफ्तारी से जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल की गतिविधियों पर असर पड़ा है, इसलिए किसी भी संभावित हमले को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। IPL क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मुंबई में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 223 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए डोनोवन फरेरा ने नाबाद 52 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात का ओपेक से अलग होने का फैसला तेल उत्पादक समूह को बड़ा झटका। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की विशाल सुरंग उड़ाई। इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिला सोमरफील्ड 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। बलोच महिला मंच ने पाकिस्तान में बलोच महिलाओं के जबरन गायब होने के मामले में संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख वैश्विक मानवाधिकार संगठनों के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। और IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।